नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया। अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि वह राकांपा के नाम और चुनाव चिन्ह के संबंध में चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने एनसीपी के दोनों धड़ों पवार गुट और अजीत गुट को 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया है। पवार ने बताया कि शरद पवार गुट और अजीत गुट के नेता आमने सामने बैठेंगे और जो फैसला लिया जाएगा वह स्वीकार होगा। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। पवार पुणे में भगवान गणेश के विभिन्न पंडालों के दौरे से इतर बात कर रहे थे। अजीत पवार जुलाई में एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे। आंध्र प्रदेश सीआईडी ने कौशल विकास निगम घोटाले से संबंधित मामले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की 5 दिन की और हिरासत की मांग करते हुए सोमवार को यहां एक अदालत में एक नई याचिका दायर की। सीआईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक वाई एन विवेकानंद ने पीटीआई भाषा को बताया कि हिरासत के लिए दूसरी याचिका इसलिए दायर की गई क्योंकि नायडू ने राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में 2 दिन की पूछताछ के दौरान कथित तौर पर सहयोग नहीं किया। विवेकानंद ने कहा, आज सबसे पहले अदालत ने नायडू की जमानत याचिका पर सुनवाई की, उसी समय सीआईडी ने याचिका दायर कर दूसरी बार उनकी हिरासत देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि याचिका को भी संख्या प्रदान नहीं की गई है। कांग्रेस ने सोमवार को देश के आम लोगों की वित्तीय बचत में कमी आने का दावा किया और कहा कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की सच्चाई सबके सामने है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि परिवारों की वित्तीय बचत 47 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर चली गई है। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ये समाचार भारत की घरेलू बचत से जुड़ी गंभीर चिंताओं को सामने लाता है। उनका कहना था कि अर्थशास्त्रियों ने कई मुद्दे उठाए, बढ़ती महंगाई और कमाई में वृद्धि न होने के कारण परिवारों के पास बचत के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, बचत दर कई दशकों में सबसे निचले स्तर पर है। रमेश ने कहा, कम बचत का मतलब है व्यापार और सरकारी निवेश के लिए कम पूंजी उपलब्ध होना। स्थिति में भारत को पैसे के लिए अस्थिर विदेशी पूंजी पर निर्भर होना होगा। सभी निजी कर्ज में से होम लोन का हिस्सा 5 वर्षों में पहली बार 50% से नीचे है। ये गंभीर चिंता का विषय है। ये दर्शाता है कि संकट घरेलू देनदारियों में वृद्धि से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं पुण्यतिथि पर यहां चारबाग स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को याद करते हुए कहा, समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति का कल्याण एवं विकास उनका सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय के उसी सपने को पूरा कर रही है। हांगजू एशियन गेम्स 2023 के महिला क्रिकेट फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हरा कर इतिहास रच दिया। 25 सितंबर सोमवार को हरमनप्रीत कौर की टीम भारतीय क्रिकेट के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली टीम बनी। श्रीलंका को सिल्वर से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला टीम दूसरी बार किसी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बनी। इससे पहले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। एशियन गेम्स के महिला क्रिकेट के फाइनल की बात करें तो पिंग फिंग कैंपस क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 7 विकेट पर 116 रन बनाए। स्मृति मंधाना और जेमिमा रॉड्रिग्स के अलावा पूरी बैटिंग फ्लॉप रही। 117 रन के टारगेट के जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 97 रन ही बना पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों को लगभग 51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। पीएमओ ने ये जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक रोजगार मेला देश भर में 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नए कर्मचारी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। पीएमओ ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गांजे की बरामदगी के मामले में मुंबई पुलिस को फटकार लगाकर आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से मिले नशीले पदार्थ की मात्रा को एक माना था, जबकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दोनों के पास मिली मात्रा को एक नहीं मान सकते। हाईकोर्ट ने पिछले साल गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि जब दो व्यक्तियों को एक साथ पकड़ा जाता है तो उनके पास से अलग अलग बरामद किए गए मादक पदार्थों को अलग अलग जब्ती माना जाना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।